الحمد لله والصلاة بالذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. ٹھیک ہے، سب نے درود شریف پڑھ لیا انشاءاللہ، آن لائن آن سائٹ سب لوگوں نے. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تو آخری کلاس میں کیا پڑھ رہے تھے ہم لوگ؟ سب سے پہلے آپ اٹھا رہے ہیں ایک جو تہمت لگائی تھی انہوں نے، آپ یہی ان کے اوپر جو تہمت لگائی تھی، ایک بنا پہ جائیے آپ محمد عادل صاحب. ہاں یہ بالکل آخری والی بات یہ تھی، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ یہی کہہ رہے تھے، یہی کہہ رہے تھے اف واقعہ، اف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھ رہے تھے جس کو کہ واقعہ اف کہتے ہیں. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نئی چیز ہاں، اور ہم نے اس سے پہلے یہ بھی پڑھا تھا، ممبر پہ چڑھنے والی بات سے پہلے یہ بھی پڑھا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا تھا اور دو بظاہر جونیئر صحابہ اس زمانے میں جو چھوٹے صحابہ تھے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں سے مشورہ کیا تھا کیونکہ ان دونوں کو گھر کے حالات کا پتہ تھا، چھوٹے بھی تھے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بھی جانتے تھے اور گھر کے افراد تھے. جی، انہوں نے یہ کیوں کہا کہ آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں؟ تو ہاں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو ایک جیسے دوستوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو کبھی ایک شکایت ہو جاتی ہے کہ بھئی آپ کو میرے بارے میں ایسا کنفرم اوپینین دینا چاہیے تھا کہ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو آپ نے ایسا اوپینین کیوں دیا کہ اگر ہو گیا تو پھر آپ چھوڑ کر کے کسی اور سے شادی کر لیے گا، لیکن آپ جو ہے وہ مشورہ کر لیں. تو علی رضی اللہ عنہ انہوں نے ایسا مشورہ کیوں دیا تھا، اس کی بھی وجہ ہم نے پڑھی. علی رضی اللہ عنہ کیوں؟ وہ علم کے اندر بہت آگے تھے، تو جو علم کے اندر بہت آگے ہوتے ہیں نا، تو وہ چیزوں کو نا پھر ذرا میتھمیٹیکلی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، پلسز اینڈ مائنسز. ٹھیک ہے، تو انہوں نے میٹر آف فیکٹ قسم کا، ایک لاجیکل قسم کا ایک جواب دیا کہ بھئی آپ مشورہ کر لیجئے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو پھر آپ کسی اور سے شادی کر لیجئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے مشورہ دینے کا کہ جس سے کہ جو سننے والا ہے نا اس کو کوئی ٹھوس ڈائریکشن کا پتہ چل جائے کہ اچھا مجھے یا تو یہ والا ڈائریکشن اختیار کرنی چاہیے یا مجھے یہ والی ڈائریکشن اختیار کرنی چاہیے. تو یہ ایک بڑا سالڈ اور بڑا یوزفل قسم کا مشورہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد جب یہ مشورہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں سے لے لیا، اچھا پھر اس کے بعد تحقیق جو ہے وہ علی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر کس سے کری تھی؟ جی ہاں، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پھر تحقیق کری تھی، پوچھا تھا کہ بریرہ سچ سچ بتاؤ، میں اللہ کا نبی ہوں، اگر تم مجھ سے ذرا سا بھی جھوٹ بولو گی نا تو مجھے وہی سے پتا چل جائے گا، مجھے بتاؤ کہ عائشہ کے بارے میں تو کبھی تم نے کوئی ایسی بات سنی جس سے کہ تمہیں کچھ تردد ہو، کوئی شک پیدا ہو عائشہ کے کردار کے اوپر کہ بھئی عائشہ اتنی اچھی نہیں ہے جتنی نظر آتی ہے، اس طرح کی کوئی بات تمہیں نظر آئی؟ تو بریرہ تعالیٰ نے کتنا پیارا جواب دیا تھا، یہ بھی بتا دیں. چلے ہاں، مجھے اس میں کبھی کوئی خرابی نظر نہیں آئی سوائے اس کے کہ بیچاری چھوٹی بچی ہے تو وہ جو ہے نا وہ آٹا گوند کر کے اس کے بعد پیڑے بنا کر کے رکھ دیتی ہے اور اس کے بعد سو جاتی ہیں، اور جب وہ سو جاتی ہیں تو بکری کا بچہ آتا ہے وہ آٹے کو کھا جاتا ہے. یعنی اتنی سمپل اور اتنی پیور اور اتنی سنسیئر اور ایسی سادہ سی بچی ہیں بیچاری، ان سے کیا اس طرح کی باتیں جو ہے وہ توقع کی جا سکتی ہیں کہ لوگ جو ہے جو باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس کے بعد گھر سے باہر نکلے اور مسجد میں تشریف لے گئے اور ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا. خطبے میں سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر عبداللہ بن ابی کا نام لیے بغیر، ٹھیک ہے، ذکر کیا नाम नहीं लिया कि अब्दुल्ला बिन उबई के बारे में, लेकिन सबको पता तो था ना कि कौन ये गड़बड़ मचा रहा है। तो आपने फरमाया कि या माशर मुस्लिमीन, ए मुसलमानों के ग्रोह, कौन है जो मेरी इस शख्स के मुकाबले में मदद करेगा, ठीक है, जिसने मुझको मेरे अहले बैत के बारे में ईजा पहुंचाई है, मुझे तकलीफ पहुंचाई है। अब ये तकलीफ कोई फिजिकल तकलीफ नहीं थी, ठीक है, जो मक्का मुकरमा के अंदर नबी अलैहिस्सलाम को लोग कैसी तकलीफ पहुंचाते थे, मारते थे, थूक फेंकते थे, पत्थर से मारते थे, है ना, ऊंट की ओझड़ी, इतना बड़ा जो उसके लार्ज इंटेस्टाइन होती है ऊंट की, आपने बकरे की देखी है ना, ठीक है, वो कितनी बड़ी और भारी चीज होती है, कसाई साहब जो है वो उसको खींच करके लेकर के जाते हैं, उठा नहीं सकते उसको, ऊंट की ओझड़ी कितनी बड़ी होती होगी, क्योंकि ऊंट बकरे के मुकाबले में कितना बड़ा होता है, वो ला करके आप की पीठ के ऊपर डाल दी, ये फिजिकल अजियतें पहुंचाते थे, ठीक है। लेकिन इस शख्स ने, अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक ने, जो कि अपने आप को मुसलमान कहता था और नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में आकर के, मस्जिद नबवी के अंदर आकर के बैठता था, इसने नबी अलैहिस्सलाम को कोई फिजिकल अजियत नहीं पहुंचाई थी, इसने आप के दिल को अजियत पहुंचाई थी, ठीक है। तो आप सर फरमाया कि मेरी कौन मदद करेगा, तो इसके ऊपर हमने फिर एक और डिस्कशन करी थी, किसी को याद है ये जो आप सर ने बात फरमाई, तो इसके ऊपर हमने आपको फिर कोई बात बताई थी, एनी वन रिमेम्बर, किसी को याद है वो क्या बताई थी, एक लेसन्स लेते हैं ना, हमारे लिए सबक है, ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में हमारे लिए सबक है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या हमें इस देश करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए वगैरह। हम स्टोरी तो नहीं पढ़ रहे ना, हम आपको स्टोरी सुनाने के लिए नहीं बैठे हुए इधर, है ना, ताकि आप जो है वो निन्नू शरीफ में चले जाएं, बेड टाइम स्टोरी, ठीक है। तो स्टोरी की मकसद से हम ये नहीं पढ़ रहे, हम तो पढ़ रहे हैं कि हमें इसमें से क्या सीखना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या बात सीखी थी, अगर वो आपको याद नहीं है तो फायदा क्या, माशाल्लाह स्टोरी तो याद है काफी सारे लोगों, तो सबक भी याद है कि नहीं। आप सर ने क्या किया कि कौन है जो मेरी उस शख्स के मुकाबले में मदद करेगा, जी तो इसमें हमारे लिए क्या लेसन है, जी जी माशाल्लाह, हमजा साहब ने जो है ना वो पूरा का पूरा सही लेसन याद भी रखा और हमें बताया भी कि हमें ये नहीं समझना चाहिए कि बस दीन का काम जो है ना वो अल्लाह का है और अल्लाह के रसूल का काम है, ठीक है ना, और हमें इसमें कोई मदद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये किन लोगों ने ये बात समझी समझ रखी थी कि दीन का काम बस अल्लाह उसके रसूल का काम है, जी बनी इसराइल ने, ठीक है, जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने फिर लानतें भी फरमाई हैं, बहुत बुरा उनके साथ मामला है, यहूदियों का मामला, ठीक है, कहते हैं ए मूसा जाओ जाओ तुम और तुम्हारा खुदा लड़ेंगे, इन्ना हाहुना कायदून, हम तो इधर ही बैठे रहेंगे, हमें कुछ थोड़ी मदद करने की जरूरत है, हम तो खाली लड्डू खाने के लिए बैठे हैं उनके लड्डू क्या होते थे, मन और सलवा ऊपर से नाजिल होता था, वो लड्डू खाते थे, ठीक है, मदद करने का हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने भी लिखा था गर्ल्स में कि दैट वी हैव टू हेल्प द उलमा इन डूइंग दीन का काम, ठीक है, असिस्ट द उलमा, ठीक है, ही फॉलोड व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला टोल्ड हिम। अच्छा, फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा की कसम मैंने अपने अहल से, यानी मेरे जो घर वाले हैं, ठीक है, घर के अंदर रहने वाले, अहले खाना कहते हैं उनको, खाना के अंदर, खाना किसका क्या मतलब, घर, ठीक है, तो घर के अंदर रहने वालों को अहले खाना कहते हैं, तो आप सुसन फरमाया कि फी अहले बैत, फी अहले बैती, मेरे घर के अंदर रहने वाले जो लोग हैं ना, तो कौन है जो है वो नहीं सॉरी कि मैंने अपने अहले खाना से, मा अलम तो अला अहली इल्ला खैरन, मैंने अपने अहले खाना से सिवाय खैर के, सिवाय अच्छी बातों के और कोई भी चीज नहीं देखी, ठीक है, वलकद दकरू रजुलन मा अलम तो अलैहि इल्ला खैरन, ना उस शख्स के बारे में कि जिसके बारे में ना ये लोग बात कर रहे हैं, यानी उस मर्द के बारे में जिसके बारे में ये लोग बुरी बात कर रहे हैं, मैंने उससे भी खैर के सिवाय कोई बात नहीं देखी, यानी मैं सिर्फ उन लोगों के बारे में खैर ही जानता हूँ। वो कौन थे जिनके बारे में लोग बुरी बात कर रहे थे? सफवान, सफवान बिन मुअतल सलमी रज़ियल्लाहु या सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है। तो लोगों ने जो सारा का सारा स्कैंडल बनाया हुआ था, बुरी बातें जो कर रहे थे, तोहमत लगा रहे थे, वो सफवान बिन मुअतल और आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ये बात फरमाई ना, ये बड़ी जबरदस्त बात है अगर हम इसके बारे में सोचें, ठीक है। वो क्या फरमाई कि देखिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं कहा कि इन लोगों ने बुरा काम नहीं किया, इन लोगों ने गलत काम नहीं किया, ये नहीं कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ठीक है ना। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं देखा था कि बुरा काम हुआ या अच्छा काम हुआ या क्या हुआ, आप सल्लम ने नहीं देखा था, ठीक है ना। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हर जगह मौजूद होते, जैसे गुलाम रसूल के अंदर भी आजकल ये बताया जा रहा है, कार्टून देखते हैं कुछ लोग, गुलाम रसूल बड़ा अच्छा कार्टून है, लेकिन कभी कभी ना जो बड़ी गड़बड़ वाली बातें शुरू कर रहे हैं आजकल। एक एपिसोड में उन्होंने ये कह दिया कि नबी अलैहिस्सलाम सलाम जो है ना वो आलिमुल गैब थे, है ना, गैब का इल्म है नबी अलैहिस्सलाम सलाम के पास, ठीक है ना। गैब का इल्म क्या होता है कि जो चीज़ें जो है वो छुपी हुई होती हैं, अल्लाह ताला ने जो छुपा के रखा है वो, उसका इल्म रखने वाला उसको आलिमुल गैब कहते हैं। आलिमुल गैब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात है, ठीक है ना। नबी अलैहिस्सलाम सलाम आलिमुल गैब नहीं है, ठीक है। तो गुलाम रसूल देखने वाले इस बात को याद रखें कि इस तरह की भी हरकतें वो करते हैं, जैसे ईद मिलादुन्नबी मनाने के बारे में भी कभी कभी एपिसोड आ जाते हैं, बाकी एपिसोड उनके बड़े अच्छे होते हैं, बड़ी इखलाक की बातें सिखाते हैं और गलत कामों से अपने दोस्तों को रोकते हैं वगैरह, अच्छी बातें। उर्दू भी बड़ी अच्छी होती है, बड़ी वो तहजीब और अच्छा शाइस्ता तरीके से बात करते हैं, तो इस वजह से हम कुछ एपिसोड बच्चों को दिखा लेते हैं कभी कभी, ज्यादा नहीं, कभी कभी, ठीक है। तो आप लोग जो देख रहे हैं गुलाम रसूल, तो याद रखें कि इस तरह की चीजों को आपने नहीं उनसे ले लेना है, जो कि गलत है, अकीदा ही गलत है इसके अंदर, आलिमुल गैब का अकीदा, तो बिल्कुल बहुत ही बुरी बात है जी। आलिमुल गैब होते तो फिर वही की क्या जरूरत है, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा यानी पॉइंट है, ठीक है। तो वही आएगी तो फिर नबी अलैहि सलाम को अल्लाह ताला खबर देते थे कि भाई ऐसा हुआ ऐसा नहीं हुआ या ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा, ये खबर मिलती थी ना, न्यूज मिलती थी नबी अलैहि सलाम, ठीक है। तो एक तो आप ने ये नहीं कहा कि देखो इन लोगों ने ये काम नहीं किया, क्यों, इसलिए कि नबी अलैहि सलाम को मालूम नहीं था ये बात, ठीक है ना। लेकिन नबी अलैहि सलाम ने क्या बात कही, आप सल्लम ने क्या बात कही, माजी की बुनियाद पर, पास्ट परफॉर्मेंस, समझते हैं पास्ट परफॉर्मेंस क्या है। पास्ट परफॉर्मेंस ये है कि इन्होंने माजी में कभी बुरा काम नहीं किया, ना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने कभी बुरा काम किया, ना सफवान बिन मुअतल रज़ियल्लाहु अन्हा ने कभी बुरा काम किया। तो पास्ट परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आप एक गुमान बनाते हैं किसी शख्स के बारे में कि जब उसने माजी में कभी कोई बुरा काम नहीं किया, गलत काम नहीं किया, तो आइंदा भी ये बुरा काम नहीं करेगा, ठीक है। जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने खुद अपने बारे में भी तो यही कहा था ना कि मैंने तुमसे कभी माजी में झूठ नहीं बोला, कभी मैंने तुम्हारी किसी अमानत में खयानत नहीं करी, तो अब मैं तुमसे अमानत में खयानत और झूठ क्यों बोलूंगा, ठीक है ना। तो मेरी बात मानो कि भाई मरने के बाद तुमने जिंदा होना है और तुम्हारे अमाल का हिसाब किताब होगा। तो पास्ट परफॉर्मेंस जब अच्छी होती है ना, तो उसकी बुनियाद पर आप एक अच्छा गुमान रख सकते हैं किसी शख्स के बारे में, और ये हमारा काम है करने का, ठीक है। जिन लोगों का पास्ट अच्छा होता है तो हम उनके फ्यूचर के बारे में भी अच्छा गुमान रखें, लेकिन 100% सर्टिनिटी के साथ आप नहीं कह सकते जब तक के आपके सामने एविडेंस ना आ जाए, प्रूफ ना आ जाए, ठीक है। दे आर मदनी कार्टून्स एंड दैट्स व्हाई दे से दीस थिंग्स, मदनी कार्टून्स, मक्की कार्टून होते तो नहीं कहते ये बात जी, उन्होंने अपना उसका नाम मदनी रखा हुआ है इस वजह से, ठीक है। खैर वो उन उस कैटेगरी के लोग हैं जिनको के अहले बिदात कहा जाता है, तो उन्होंने फिर अकीदे में भी बिदतें बनाई हुई हैं और अमल के अंदर भी बहुत सारी बिदतें बनाई हुई हैं। अच्छा तो आपसे सुन फरमाया कि मैंने कभी इन लोगों से खैर के अलावा कोई बात नहीं देखी, ठीक है। अच्छा अब आप सोचें कि इतना बड़ा जो मदीना मुनव्वरा के अंदर ये एक इशू क्रिएट हो गया, ठीक है, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इससे इफेक्ट हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया उसामा बिन जैद ना, मतलब दिल के ऊपर कितनी अजियत आ रही थी आपसे सलम के ऊपर, है ना, कितना ज्यादा आपसे सलम जो है वो दुख में मुबतला हुए। ठीक है, मशवरा किया, इनसे भी मशवरा किया, इनसे भी तहकीक करी, और फिर उसके बाद जो है ना वो मिंबर पे खड़े होकर के ऐसी बात कर रहे हैं कि मुझे, मेरी कौन मदद करेगा इस शख्स के खिलाफ। ठीक है, तो इससे हमें एक और भी बात बहुत अहम पता चलती है कि ये जो जुबान से लोग बातें करना शुरू कर देते हैं ना, ठीक है ना, इन बातों का बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, जुबान से निकली हुई बातों का बहुत बहुत सख्त जो है ना वो एक असर होता है, इफेक्ट होता है। ठीक है, अगर अच्छी बात हो तो अच्छी बात का बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, ठीक है ना, कलिमा तो तय्यब, अच्छा कलिमा, अच्छा कलिमा जब आप किसी से कहते हैं तो उसका एक अच्छा इफेक्ट होता है, उसी तरह बुरा कलिमा जब आप किसी को कहते हैं तो उसका एक बुरा इफेक्ट होता है। ठीक है ना, तो ये लोग जो कर रहे थे, ये क्या काम कर रहे थे, ये विदाउट एविडेंस एंड विदाउट एनी प्रूफ, ये आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा और सफवान बिन मुतर्रदान के ऊपर जो है वो तोहमत लगा रहे थे, बुरा इल्जाम लगा रहे थे। इनके पास कोई प्रूफ कोई थोड़ी था, इन्होंने कुछ देखा कोई थोड़ी था, इन्होंने कुछ सुना कोई थोड़ी था, इनके पास कोई वीडियो कोई थोड़ी आई थी। आजकल तो वीडियो भी जो है वो खराब कर दी जाती है, ठीक है ना, वो बहुत सारे टेक्नोलॉजी जिसमें कि वीडियो को कुछ को कुछ बना देते हैं, ठीक है ना, लेकिन चले वीडियो फिर भी एक किस्म का प्रूफ होता है, या ऑडियो रिकॉर्डिंग किसी किस्म का, इनके पास तो कुछ भी नहीं था ना। ठीक है, लेकिन इन्होंने कैसे बातें करनी शुरू कर दी जिससे कि बड़े से बड़े लोग जो है वो मुतासर हो गए। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा अंग्रेजी में इसको प्रोपेगेंडा कहते हैं। ठीक है, इस प्रोपेगेंडे से जो है ना फिर लोग, जो गंदे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं ना, इससे फिर वो बड़े यानी अपने ऑब्जेक्टिव्स और अपने फायदे हासिल करते हैं, लोगों को ना किसी के खिलाफ कर देते हैं जो कि अच्छा बंदा होता है, लेकिन उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा से बुरी बुरी बातें फैला करके उसके खिलाफ कर देते हैं। ठीक है ना, हालांकि वो बंदा ऐसा नहीं है, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा और सफ़वान बिन मुतर्रदान ऐसे थे हरगिज़ नहीं थे, लेकिन इन लोगों ने बुरी बुरी बातें कह करके कितने लोगों को मुतासर कर दिया ना, उनके बारे में गंदा बना करके पेश कर दिया, लोग उनके बारे में सोचना शुरू हो गए, अच्छा होगा कुछ ना कुछ, यकीनन कुछ ना कुछ होगा। अच्छा, उसी तरह प्रोपेगेंडे से एक और भी काम किया जाता है, वो क्या, जैसे आजकल उलमा को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया जा रहा होता है ना, वो ऐसे हैं, उन्होंने तो ये किया, उन्होंने किस वक्त कुछ कहा, उस वक्त फिर उसको कुछ और कह दिया, फिर उसके बाद ये कर दिया, वो कर दिया, हालांकि इनके पास प्रूफ नहीं होते हैं, इधर की बात उधर लगा के आए बाएं शाएं करना इसको कहते हैं उर्दू में, आए बाएं शाएं, इधर की उधर लगा दी, उधर की इधर लगा दी, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई बात ले ली, उसको उधर फिट कर दिया, इसको तो ये उल्टा सीधा हरकत करके किसी को बदनाम करते हैं। और इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी ये काम होता है जी। तो क्या होता, अलग आ जाते, यानी सफवान बिन मोतल अलग आ जाते, उनको क्या पता था भाई आगे, वो आलिमुल गैब थे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, सफवान बिन मोतल को क्या पता क्या होने वाला है। ठीक है ना, तो सफवान बिन मोतल तो भाई सीधा सा उन्होंने ये यानी बदगुमानी, सारे मुसलमान हैं, आगे मुसलमानों का लश्कर है, उनको क्या पता इनमें से कौन मुनाफिक है कौन मुनाफिक नहीं है, और इन्होंने आगे क्या बात बनानी है ना, सफवान बिन मोतल भी कोई आलिमुल गैब नहीं थे। ठीक है ना, तो इस वजह से वो सीधा सीधा, एक मोमिन जो होता है ना, असल में मोमिन की एक बड़ी खास बात होती है, मोमिन जो होता है ना बड़ा सीधा सादा और शरीफ सा इंसान होता है, वो मक्कार और बहुत ज्यादा इस किस्म की उसके अंदर नहीं होती, यानी बहुत ही हर चीज के जो है ना वो पखिए उधेड़ना, ये वो मोमिन का काम नहीं होता, बड़ा सीधा सादा सिंपल, बहुत ही किसको क्या, इसको क्या कहते हैं, गिर्रुन करीमुन, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में फरमाया, अल मोमिनु गिर्रुन करीमुन वल काफिरु खब्बुन लईमुन, है ना, ये बड़ा खबीस किस्म का और बड़ा जो है ना मलामत करने वाला, ये तो काफिर की किस सिफत है, मोमिन तो गिर्रुन करीमुन है ना। अच्छा नहीं, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, ये नॉन एक्सपेक्टिंग, नॉन एक्सपेक्टिंग, ये लोगों से कुछ बदगुमानी करना, ये सीधा साधा अपने काम में लगा हुए, नेकी का काम कर रहा है। ठीक है, बहरहाल तो ये प्रोपेगेंडा से एक तो अच्छे लोगों को बुरा बनाते हैं लोगों के सामने, और दूसरा भी काम करते हैं, दूसरा काम क्या करते हैं जी, बुरे लोगों को अच्छा बना देते हैं बुरों को अच्छा बनाना भी प्रोपेगेंडा का काम है। ठीक है, और अच्छों को बुरा बना देना, ये बहुत बड़ी एक मशीनरी है पूरी दुनिया के अंदर। उस जमाने में अब्दुल्ला बिन उबई इसी प्रोपेगेंडा मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा था, और आज भी जो है ना वो यही होता है कि बड़े बड़े जो मुल्क होते हैं ना, सुपर पावर्स या इवन जो भी मुल्क हो, वो अगर किसी दूसरे मुल्क के ऊपर हमला करना चाहता है, ठीक है ना, तो आजकल जो है ना ये इतना आसान नहीं है हमला करना। पुराने जमाने में बस बादशाह सलामत का दिमाग घूमा, उन्होंने हमला करना है, वो चल के हमला करने देते जा करके, ठीक है ना। आजकल ऐसे हमला नहीं करते, आजकल उनको बड़ा खौफ लगा हुआ है कि यार लोग हमें बुरा समझेंगे अगर हमने ऐसी जा करके किसी गरीब मुल्क के ऊपर हमला कर दिया, है ना, तो लोग जो है ना बुरा, अच्छा दूसरे लोग तो बुरा समझेंगे, हमारे अपने लोग हमें बुरा समझेंगे, वो हमारे खिलाफ कहीं ना हो जाए, तो इस वजह से ना ये किसी के ऊपर हमला नहीं करते जब तक के प्रोपेगेंडा के जरिए से उसको बुरा ना बना करके पेश करें, ठीक है ना। वो कहते हैं ये बहुत गंदे लोग हैं, ये इन्होंने ना बड़ा जुल्म दुनिया के अंदर मचाया हुआ है, इन्होंने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाए हुए हैं, ये जो है वो हमला करके दूसरों को खत्म कर देंगे, इस वजह से हमें जरूरी है कि हम इनको रोकें, इन गंदे लोगों को रोकें, वरना ये गंदे लोग जो है ना दुनिया के अंदर फसाद मचा देंगे। तो पहले ये ना टीवी के जरिए से, प्रोपेगेंडा मैकेनिज्म के जरिए से किसी मुल्क या किसी मुल्क के कुछ लोगों को गंदा बनाते हैं, बहुत लोगों की निगाहों में उसको खराब करते हैं, फिर उसके बाद हमला करते हैं, ठीक है ना, ताकि इनके अपने जो लोग हैं ना वो इनके खिलाफ ना हो जाए, ठीक है, और दूसरे जो मुल्क हैं वो भी इनको सपोर्ट करें इस हमले हमले के अंदर। तो ये होता है प्रोपेगेंडा का काम, ठीक है ना। इस वजह से मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने ये जो वाकया किया है ना, इस वाकये के अंदर हमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये बतला दिया, तुमने प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं होना, तुमने प्रोपेगेंडा के ऊपर कान नहीं धरने, तुमने एविडेंस तलाश करनी है, अगर तुम्हें एविडेंस मिलती है तब जाकर के तुम कोई काम करोगे, वरना नहीं, ठीक है ना। ये वाकया इफ़ का एक बहुत बड़ा सबक है। आज सोशल मीडिया, इंटरनेट के जरिए से प्रोपेगेंडा का बाजार गर्म है, एवरीवन ट्राइज टू यूज इट, मोमिन डज नॉट ट्राई टू यूज इट, मोमिन प्रोपेगेंडा नहीं करता, मोमिन अपनी बात पहुंचाता है, हक को पहुंचाता है, सच को पहुंचाता है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी बात को फिर स्प्रेड करते हैं, ठीक है ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप लोगों को हज की तरफ बुलाएं, अगर किसी को आयत याद हो तो अज़न फिल नास बिल हज, वो तो नबी अलैहिस्सलाम को, आप छुट्टी करने वाले थे, मैं आपको जवाब नहीं दे सका, आपको छुट्टी करनी चाहिए थी, बहरहाल माफ कीजिए जी, आपको बता रहे थे अब्दुल्ला बेटा, तो बहरहाल हमें वैसे भी वैसे पता है वाकयात रिवायात से कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप लोगों को हज पे बुलाएं। अब वहां तो कोई था ही नहीं, मक्का मुकरमा है, संगलाख पहाड़ियां हैं, और अल्लाह ताला फरमाने आप लोगों को हज पे बुलाएं, अल्लाह मैं हज पे बुलाऊं, कोई है ही नहीं यहाँ पे, आपका काम है बुलाना, लोगों तक बात पहुंचानी मेरा काम है। तो जब उन्होंने बुलाया ना लोगों को हज पर, तो अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात जो है पूरी दुनिया में फैला दी, हत्ता के जो दुनिया में नहीं आए थे ना उनको भी पहुंचा दी, आलम अरवा के अंदर बैठे वेट कर रहे थे पवेलियन में, अभी मैदान में आए नहीं थे, उधर भी अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात को पहुंचा दिया, और जिसने उसके ऊपर लबैक कहा उसको अल्लाह ताला ने हज की सआदत अता फरमा दी। उलमा फरमाते हैं जिसने जितनी मर्तबा लबैक कहा उतनी मर्तबा उसको हज की सआदत अता फरमाई इस जिंदगी के अंदर, ठीक है। तो मोमिन का काम प्रोपेगेंडा करना नहीं होता कि झूठ बोल करके और उल्टी सीधी बातें करके अपनी बात को दीन फैलाएंगे, झूठ बोल बोल के दीन फैलाएंगे या किसी को जलील कर करके दीन फैलाएंगे, नहीं, ये मोमिन का काम नहीं है। मोमिन की बात तो अल्लाह ने फैलानी है, काफिर का ये काम है कि वो प्रोपेगेंडा के जरिए से अपनी बात फैलाता है, ठीक है। बहरहाल तो बुरे आदमी को बहुत अच्छा बनाकर पेश करना, जी बिल्कुल। अच्छा तो फिर क्या हुआ कि प्रोपेगेंडा जो है ना ये इससे बचना है, बहुत ज्यादा बचना है। जी जिसके बारे में जो भी बुरी बुरी बात करता है ना, तो इसका तरीका क्या है, कुरान मजीद ने इसका क्या तरीका बताया है, इजा जाअकुम फासिकुन बिनबअइन फतबय्यन, ठीक है, जब कोई बुरा शख्स तुम्हारे पास कोई बात करने के लिए आए ना, ठीक है, तो उससे तुम प्रूफ मांगो, उसकी बात की तहकीक करो, ठीक है ना। उसकी तहकीक किए बगैर उसकी बात को एक्सेप्ट ना करो, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई बड़ों को हिदायत। बच्चों के लिए तो ये है कि भाई आपने तो ऐसे लोगों से बात ही नहीं करनी, ठीक है ना। ऐसे लोगों से आपने इंगेज ही नहीं होना ना, क्या ना? मतलब मैं क्यों आपकी बात सुनूं, आप हैं कौन? नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस मुबारका के अंदर हमें 1400 साल पहले बात बता दी कि एक जमाना आएगा कयामत के करीब, जिसके अंदर जो है ना वो रुएबजा बोलेंगे, रुएबजा। अच्छा, सहाबा कराम को पता भी नहीं था ये रुएबजा क्या होते हैं, एक ऐसा लफ्ज था, पीपल वर नॉट फेमिलियर विद इट। रुएबजा बोलेंगे। तो पूछा कि भाई ये रुएबजा क्या होते हैं, तो नबी साहब ने जवाब दिया कि वो लोग हैं जिनको जो ना बस ऐसे ही बोलना शुरू कर देंगे, है ना, इनको पता वता कुछ होगा नहीं, और जो है ना ये टीवी पे, तो अब सबने तो टीवी का तो ऑफकोर्स नाम नहीं लिया, लेकिन ये बस जैसे कि आजकल एनालिस्ट होते हैं टीवी पे बैठे हुए हैं, वो जो है वो बता रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में ये हो रहा है, या पाकिस्तान में ये नहीं होना चाहिए था, और ये ऐसे हो गया, वो वैसे हो गया। उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, उनकी कोई ना तो दीनी क्वालिफिकेशन है, ना कोई दुनियावी क्वालिफिकेशन है, बस बैठ करके बोलना शुरू कर दिया और यूट्यूब की वीडियो बनाई और जा करके उसको इंटरनेट के ऊपर डाल दिया। अब हम बेवकूफ़ इंसान, हमसे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा कि हम जा करके उनकी वीडियोस को देखना शुरू कर देते हैं। कोई हमें भेजता है, हम फौरन उसको देखना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारा कसूर है कि हम ऐसे लोगों की बातें क्यों सुनते हैं, ठीक है। हमें बिल्कुल भी ऐसे लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए। हमारा दीन हमें ये बात बताता है, ये उसूल देता है कि रावी जो बात तुम्हें बता रहे हैं ना, उसको कहते हैं रावी, रिवायत करने वाला। रावी की सेहत को देखो, वो बात बताने वाला ये कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बात सुनने के काबिल है कि बात सुनने के काबिल नहीं। अगर रावी सादिक है, रावी अमीन है, तब उसकी बात को तुम सुनो, वरना तुम उसकी बात को नहीं सुनो, ठीक है ना। अब अगर हम कुरान मजीद के इस उसूल को नहीं मानते, और फिर हमारे दिलों के अंदर शकूक पैदा हो जाते हैं और बोझ पैदा हो जाता है उलमा के बारे में, मशाइख के बारे में, तो देयर इज नो वन एल्स टू ब्लेम एक्सेप्ट आवर सेल्व्स। हम खुद अपने आप को ब्लेम करें और हम खुद फिर उस नतीज के जिम्मेदार होंगे, नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। जी, अब ये सियासत की क्लास नहीं है, तो इस वजह से आपको उसूल बता दिया, उसूल के ऊपर आप फॉलो करें, बाकी तफसीलात जो है ना वो फिर किसी और वक्त आपको पूछनी होंगी। अच्छा, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर एक सवाल जो आपको करना चाहिए था वो ये है कि जब ये लोग प्रोपेगेंडा कर रहे थे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने इस प्रोपेगेंडा को बाय फोर्स क्यों नहीं रुकवा दिया, बाय फोर्स क्यों नहीं रुकवा दिया, ठीक है ना। उमर अल-तरान तो मौजूद हैं हर वक्त ही, माशाल्लाह, ए अल्लाह के नबी, बस आप मुझे इशारा कीजिए, मैं जाकर इसका सर कलम करके आ जाता हूँ, ठीक है ना। और भी बहुत सारे साहब, अब आगे उनका भी जिक्र आ रहा है, नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी इजाजत नहीं दी, ठीक है। कंफर्म भी नहीं था नबी अलैहिस्सलाम को ये जो वाकया हुआ है ये एग्जैक्टली क्या हुआ है। आपसे सुन तो पास्ट परफॉर्मेंस की बुनियाद पे कह रहे थे ना कि ये हो ही नहीं सकता कि वो गलत काम करें, लेकिन पता तो नहीं था कि हुआ क्या, नहीं हुआ, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अब्दुल्ला बिन उबई के बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं कि दूसरे लोगों को नहीं पता था, दूसरे लोग तो यही देखते थे कि भाई ये तो मुसलमान कह रहा है अपने आप को, मुसलमानों जैसा हुलिया बनाया हुआ है, नमाजें भी पढ़ता है, आके बैठता भी है, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी करता है। तो उसके साथ ऐसा मामला होना जो है ना फिर एक फितने का सबब बन जाता, नबी अलैहिस्सलाम ने उस फितने को अवॉइड किया, ठीक है ना। इसको असल में सियासत कहते हैं। तो सियासत की क्लास तो असल में ये है, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त कौन क्या कह रहा है उसकी क्लास ये नहीं है, ठीक है। बहरहाल जी, जोर से बोलिए ना। हाँ बिल्कुल, की बात अभी हुई। अच्छा, इसके बाद फिर क्या हुआ, जब आप ने खुतबा दिया ना, तो अंसारे मदीना के दो ट्राइब्स थे ना मेन, औस और खजरज, ठीक है। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक जो था ये खजरज कबीले का था, ठीक है। और नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये बात करी तो सब समझ गए कि अब्दुल्ला बिन उबई के बारे में बात हो रही है, और वो खजरज कबीले का था, ठीक है ना। अब हुआ ये कि ये बात सुन करके ना, सबसे पहले वो औस कबीले के सरदार थे हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला, वो खड़े हो गए, ठीक है। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतनी अजियत पहुंचाई किसी शख्स ने, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मदद के लिए हमसे कह रहे हैं, उनसे रहा नहीं गया, वो एकदम से खड़े हुए, जज्बात में आकर के इस तरह से खड़े होते हैं ना, एकदम से खड़े हुए और फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी एयानत मदद के लिए हाजिर हूँ। ये लोग तो फौरन पहल करते थे ना आप सल्लम की बात के ऊपर, मैं हाजिर हूँ। अगर वो शख्स जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ना, क्योंकि नाम तो नहीं लिया था ना रसूलल्लाह ने, अंदाजा हो गया था लेकिन नाम नहीं लिया था, तो फरमाया उन्होंने साद बिन मुआज ने कि अगर ये शख्स हमारे कबीले औस का होगा ना तो हम अभी उसकी गर्दन उड़ा देंगे, ठीक है ना, और अगर ये खजरज में से होगा ना, दूसरे कबीले में से, तो अगर आपने हमें हुक्म दिया ना कि उसकी गर्दन उड़ाओ, हम वी विल नॉट इवन थिंक ट्वाइस, हम खजरज वाले की जाकर गर्दन उड़ा देंगे। वी डोंट केयर कि वो खजरज वाले फिर उसके बाद हमें हमसे दुश्मनी करें या हम पे रिटेलिएट करें, हम आपके हुक्म के मुताबिक उसकी जाके गर्दन उड़ा देंगे, ठीक है। ये साद बिन मुआज का जज्बा और हमीयत थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी, खड़े होकर एकदम से उन्होंने ये कह दिया, ठीक है। अब जब जो है ना, जो खजरज वाले थे उनको भी पता तो चल चुका था कि मसला तो है अब्दुल्ला बिन उबई का, तो उधर से ना फिर साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु, जो कि खजरज के सरदार थे, वो खड़े हो गए, ठीक है। और उन्होंने ये सोचा कि ये साद जो है ना, अब साद बिन मुआज जो है, ये भाई अपनी बात करते अपने औस की, अगर औस का बंदा है तो हम मार देंगे उसको, ठीक है ना, ये खामखा हमारी बात क्यों कर रहे हैं, है ना, गोया कि हमारे ऊपर तनकीद कर रहा है कि खजरज वाले अपना काम नहीं कर सकते, खजरज वाले जो है ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ही मानेंगे और औस वाले ही जो है उन्होंने सारा काम करना है, तो ये हमारे ऊपर एतराज क्यों कर रहे हैं ना साद बिन मुआज। तो साद बिन उबादा जो है ना, उन्होंने खड़े होकर ये कहा कि खुदा की कसम तुम उसको हरगिज कतल नहीं कर सकोगे, तुम उसको नहीं कतल कर सकोगे, ठीक है। यानी मतलब ये था उनका कि भाई अगर हमारे कबीले को हो तो वी विल डू द जॉब, डोंट वरी अबाउट इट, वी विल डू द जॉब, ठीक है। तो जब इस तरह से उन्होंने जवाब दिया, अब देखिए ये जज्बात में आकर के जो है ना फिर गड़बड़ हो जाती है, और शैतान आपको पहले ही बता चुके हैं कि वो करता है ना, हर बंदे के साथ जो है वो एक शैतान लगा होता है उसका अपना, जो अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, क्या कहते हैं इस वाले शैतान को, खन्नास, ठीक है। तो खन्नास तो मुस्तकिल मौजूद है ना हर एक के साथ, तो इस तरह से जो है वो एक जज्बाती डायलॉग फिर से शुरू हो गया, ठीक है। तो अब जब इन्होंने जवाब दिया साद बिन उबादा ने, तो उधर से ना साद बिन मुआज औस के जो सरदार थे उनके चचा हजरत उसैद बिन हुदैर रजी अल्लाह ताला, बहुत बड़े साहबी जिन्होंने मदीना मुनव्वरा के अंदर बड़ा काम किया था, वो साद बिन मुआज के चचा थे, वो खड़े हो गए और उन्होंने ना साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हु को मुखातिब होकर कहा, नहीं तुम गलत कहते हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमको कत्ल का हुक्म देंगे ना तो हम जरूर कत्ल करेंगे, चाहे वो तुम्हारे कबीले का क्यों ना हो, ठीक है। और तुम क्यों उस बंदे की जो है ना वो साइड ले रहे हो कि वो तुम्हारे कबीले का है तो तुम उसको कत्ल नहीं कर सकते, यानी इन्होंने उसको दूसरे तरीके से इंटरप्रेट किया, ठीक है, कि भाई एज इफ के साद बिन उबादा जो है ना वो उसकी साइड ले रहे हैं, तो इन्होंने जरा और सस्ती की से बात कह दी कि तुम उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, क्या तुम खुद मुनाफिक तो नहीं हो कि तुम एक मुनाफिक को सपोर्ट कर दो, ठीक है। तो इस तरह से ना फिर एक हीटेड डिस्कशन शुरू हो गई, ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम सलाम के सामने ये हो रहा है। तो नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने जब ये बात सुनी ना, इस तरह से सुना कि ये तो एक इन लोगों के दरमियान आर्गुमेंटेशन शुरू हो गई है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मेंबर से नीचे उतरे और सबको ठंडा किया, नहीं इस आर्गुमेंटेशन की कोई जरूरत नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम सलाम ठंडा फरमाते थे फौरन सहाबा ठंडे हो जाते थे, ठीक है ना, और अपनी इस जज्बात से जो है वो बाहर आ जाते थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर फिर वही बात हम आपके सामने रिपीट करेंगे कि सहाबा ने ऐसा क्यों किया, वो तो परफेक्ट इंसान थे, उनको तो जन्नत की खुशखबरी मिली हुई है और सब कुछ जो है वो उनका सेट है, तो फिर वो क्यों किया इस तरह से उन्होंने, जी इसका जवाब जो देगा ना उसको फिर हम कोई टॉफी शॉप में मंगवा के देंगे, जी जी तवज्जो, अच्छा जो बात हम आपको पहले से बता चुके हैं वो बताने का क्या फायदा, तो आपसे वो चीज पूछ रहे हैं जो आपके सामने नहीं, अभी पहले बात हो चुकी है लेकिन अभी हम बात करेंगे, जी माशाल्लाह टॉफी आपकी पक्की हो गई यही वजह थी, आप कुछ और कह रहे थे, वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जज्बात में आ गई। जज्बात जो थे वो अच्छे ही जज्बात थे, कोई बुरे जज्बात नहीं थे। नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, नबी अलैहिस्सलाम की मदद, आप सल्लम की जो कॉल थी कि कौन मेरी मदद करेगा, उसके ऊपर लबैक कहना, तो ये सारी बातें अच्छी थी। लेकिन आपस में इस तरह से आर्ग्यूमेंटेशन और इस तरह से सख्ती और गुस्सा और ये सब कुछ क्यों शुरू हो गया? क्योंकि सहाबा कराम जो थे ना वो स्टूडेंट्स थे, ठीक है। सहाबा कराम जो है वो पैदाइशी तौर पे परफेक्ट इंसान नहीं थे, पैदाइशी तौर पे दे वर नॉट बॉर्न परफेक्ट, ठीक है ना। नबी अलैहिस्सलाम को दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजा क्यों था, ठीक है, चले उनसे गलती हो जाती थी लेकिन मान लेते थे गलती को, वो तो बात हो गई, बिकॉज दे वर नॉट परफेक्ट, दे वर स्टिल लर्निंग, ठीक है ना। नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दुनिया में क्यों भेजा था, मकासिद बेअसत क्या है तो फादर का नाम, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्म, ठीक है ना। यतलू अलैहिम आयातिही यानी उनको आयात पहले नहीं पता थी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तिलावत करते थे उनके सामने आयात, ठीक है ना। दे वर इग्नोरेंट ऑफ अल्लाह आयात, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाज सेंट टू टेल देम द आयात, ठीक है ना। वो युज़क्की हिम उनका तज़किया करते थे, क्या मतलब उनका तज़किया पहले नहीं हुआ हुआ था, आप सल्लम का काम यह था कि आकर के तज़किया फरमाएं, ठीक है ना। वो युअल्लिमुहुमुल किताब और किताब का इल्म उनको सिखाते थे, यानी उनके पास किताब का इल्म पहले नहीं था, अब नबी अलैहिस्सलाम आकर के उनको किताब का इल्म सिखाते थे, ठीक है ना। उनके पास हिकमत पहले कम थी या नहीं थी किसी के पास, नबी अलैहिस्सलाम को भेजा गया कि अब आप इनको हिकमत सिखाएं, ठीक है ना। अगर उनके पास पहले से हिकमत भी मौजूद थी, उनके पास पहले से इल्म भी मौजूद था, उनके पास पहले से तज़किया भी पूरा हुआ हुआ था और उनको जो है वो आयात इलाही का भी पता था, तो नबी अलैहिस्सलाम को क्यों भेजा गया, क्यों भेजा गया? फिर अगर ऐसा था तो नबी अलैहिस्सलाम को फिर नाउज़ बिल्ला वही जो गुलाम रसूल वाले लोग, गुलाम रसूल की तो बहुत अच्छी अच्छी बातें भी होती हैं, बत्तियां लगाने के लिए ना, चिरागा करने के लिए भेजा गया, नबी अलैहिस्सलाम पैदा होगा चिरागा करो, चिरागा करो, राइट, और जो है वो नाते पढ़ो और जो है वो ये पढ़ो वो पढ़ो और इस तरह की, नहीं ना। बस नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में इसीलिए भेजा गया था ताकि आप सल्लम को जो है ना वो कहीं पर बिठा दो और फिर नाते पढ़ना शुरू कर दो और जो है ना वो चिरागा विरागा कर लो बस, ठीक है ना। सीखना सिखाना कुछ थोड़ी, इसलिए कुछ थोड़ी भेजा गया था, है ना, नहीं। नबी अलैहिस्सलाम को सीखने सिखाने के लिए भेजा गया। नबी अलैहिस्सलाम को किसने सिखाया? अल्लाह ताला ने सिखाया जिब्राइल अलैहिस्सलाम के वास्ते से। और सहाबा को किसने सिखाया? नबी अलैहिस्सलाम ने सिखाया। सहाबा की अजमत क्या थी जो कि हमारी, हम जिसमें डंडी मार जाते हैं, गलती कर जाते हैं, लेकिन सहाबा ऐसा नहीं करते थे। सहाबा की बड़ी बात क्या थी? Sahaba were perfect students, exactly. Sahaba were perfect students in the sense that they immediately and fully followed their teacher. They fully followed their teacher. Wo behtareen students the. Wo behtareen murid the. Wo behtareen salikin the. Ye hai sahaba ki azmat. है ना, उन्होंने अपने टीचर से अपने शेख से सब कुछ हासिल कर लिया और अपने आप को उससे भर लिया। जितनी जितनी अल्लाह ताला ने जिस जिस सहाबे की कैपेसिटी बनाई थी, हर इंसान के अल्लाह ताला ने अलग अलग कैपेसिटी बनाई हुई। कैपेसिटी पता है, आप बेचारे बोर हो रहे हैं, इनकी उम्र से थोड़ी ज्यादा बातें और आपकी उम्र से और कम बच्चे, उनको भी समझ में नहीं आ रहा होगा जाहिर है। एक ग्लास होता है ना ग्लास, इस ग्लास के अंदर आप कितना पानी भर सकते हैं, जितना इस ग्लास की कैपेसिटी है ना, हाँ। और एक जग जो है वो अगर बड़ा सा जग होता तो उस जग की कैपेसिटी जो है वो इस ग्लास की कैपेसिटी से ज्यादा है ना, है ना। तो इस ग्लास के अंदर जग के जितना पानी तो नहीं भर सकते ना। तो हर चीज की अलग अलग कैपेसिटी होती है, उसी तरह अल्लाह ताला ने हर इंसान की अलग अलग कैपेसिटी बनाई है, ठीक है ना। ये ग्लास फुल हुआ हुआ है, ठीक है। इस ग्लास ने ये नहीं कहा कि मेरे अंदर जो आप पानी भर रहे हैं ना, तो फुल होने से पहले ही, नहीं नहीं मुझे और पानी नहीं चाहिए, मुझे और पानी नहीं चाहिए, है ना, इट्स टू मच फॉर मी, मुझे ज्यादा ज्यादा पानी नहीं चाहिए, नहीं। ये ग्लास पूरा भर गया, इट्स फिल्ड टू कैपेसिटी, अगर कोई ग्लास, इमेजिन करें कि ग्लास जो है वो इंसान होता, आखिर को ग्लास भी इंसान है, ठीक है, इस तरह से मजाक करते हैं कुछ लोग, तो वो अगर ग्लास कह रहा होता कि नहीं नहीं मुझे ज्यादा पानी नहीं दें, मैंने बस नहीं नहीं पानी चाहिए बस, है ना, तो क्या होता, वो खाली रह जाता ना, ठीक है ना, भरने वाला तो भरना चाह रहा है उसके अंदर, ठीक है ना, लेकिन वो कहता नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो वो खाली रह जाएगा ना। फिर हम में और सहाबा में यही फर्क है, नबी अलैहिस्सलाम सहाबा को सिखाते थे, सहाबा जो है वो सीखते थे और अपने आप को फुल कर लेते थे, हम अपने आप को फुल नहीं करते। तो अल्लाह ताला ने हर सहाबी की एक अलग कैपेसिटी बनाई है, सबसे ज्यादा कैपेसिटी के सहाबी की बनाई अल्लाह ताला ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक की। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसकी बनाई बताइए, है अबू बकर की, तो सबसे ज्यादा। नंबर टू उमर फारूक रतान और अशरा मुबशरा, फिर सारे इस तरह से उस्मान गनी रतान, अली रतान और अबू बादा रतान, ये सब है ना, इनकी सबसे ज्यादा कैपेसिटी बनाई और बाकी सहाबे की उससे कम 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 कम, ठीक है ना। लेकिन हर सहाबी जिसकी इतनी कैपेसिटी बनाई उसने अपने आप को इतना फुल कर लिया, फुल कर लिया उसने अपने आप को, जिसकी इतनी कैपेसिटी बनाई उसने अपने आप को इतना फुल कर लिया नबी रसूलुल्लाह के फैज से, इल्म से, हिकमत से फुल कर लिया, जिसकी इतनी कैपेसिटी थी उसने भी अपने आप को फुल कर लिया, कोई खाली नहीं रहा। ये नहीं रहा कि नहीं नबी अलैहिस्सलाम सलाम बस मुझे आपसे और नहीं सीखना, हालांकि उसके अंदर कैपेसिटी है नहीं सीखना, नहीं, ऐसा कोई सहाबी नहीं था। ये है सहाबा की असर, ये है सहाबा की असर, ठीक है ना। अच्छा, जब वो फुल हो गए, अब वो अच्छा मरने से पहले पहले फुल हो गए, यानी किसी सहाबी को मौत नहीं आई जब तक के उसने अपने आप को फुल नहीं कर लिया। जब वो फुल हो गया तो उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ ले गए, या वो खुद इस दुनिया से तशरीफ ले गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात से पहले भी तो बहुत सारे सहाबा इस दुनिया से चले गए ना, लेकिन जो भी गया फुल हो करके गया, ठीक है ना। इस फुल होने की वजह से हर सहाबी को अल्लाह ताला की रजा, हर सहाबी के साथ अल्लाह ताला की रजा, ठीक है। तो जब सहाबा के बारे में ऐसी कोई बात सुना करें ना कि सहाबी लड़ना शुरू हो गए या सहाबी में इख्तलाफ हो गया या सहाबी, तो बहुत आसान है इसका, भाई सहाबा जो है वो सीखने के लिए आए थे, नबी अलैहिस्सलाम आकर के उनको सिखा देते थे, मसला हल हो जाता था, ठीक है ना। परफेक्ट इंसान तो वो पैदाइशी तौर पे थे ही नहीं, अगर वो परफेक्ट होते तो नबी अलैहिस्सलाम की जरूरत क्या थी इस दुनिया के अंदर, ठीक है ना। लेकिन जब आप सल्लम से उन्होंने सीख लिया ना, तब वो परफेक्ट हो गए, उसके बाद वो परफेक्ट हो गए, अब हम उनके ऊपर एतराज नहीं कर सकते, ठीक है। उन्होंने जो भी किया सही किया, अपने इश्तिहाद के मुताबिक बिल्कुल सही किया। जी अगर सहाबी को कर सकते तो हमें क्यों नहीं कर सकता, बेशक सहाबी को कर सकता था और हमें भी कर सकता है। हाँ, तो आप सहाबी पे एतराज करने की बजाय पे सहाबी को शैतान ने गलत काम के ऊपर डाला, उनकी बड़ी बात क्या थी, उन्होंने तौबा कर लिया, नबी अलैहिस्सलाम से अपने आपको भर लिया, हम भी तो ये काम करें ना फिर, ठीक है ना। यानी ये जो शैतान वाला मसला है कि शैतान हमें अगर सहाबी को शैतान बहका सकता है तो हमें क्यों नहीं बहका सकता, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। जिस तरह सहाबी को बहका सकता है हमें भी बहका सकता है, लेकिन अल्लाह के बंदे जिस तरह सहाबी तौबा करता था उस तरह तुम क्यों नहीं तौबा करते फिर, है ना। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सहाबी याद नहीं आते, सहाबी याद आते हैं एतराज करने की वजह से, ये उनको भी बहका सकता था, उन्होंने गलत काम किया ना, ये आप ये नहीं आता था कि मैं भी तो तौबा करूँ ना, जिस तरह सहाबी ने तौबा करी थी, ठीक है, और जिस तरह सहाबी को अल्लाह की रजा मिली थी मुझे भी तो अल्लाह ताला की रजा मिल जाए ना। जी मरते दम तक गलती करते रहे थे, नहीं उसकी फिर आपको उनको एक्सप्लेनेशन भी बतानी पड़ेगी ना, ठीक है ना। उनको भी अल्लाह ताला ने फिर उसके बाद जो एक गलती थी उसके ऊपर भी अल्लाह ताला ने फिर माफ करवा दिया था ख्वाब में आकर के। तो इस तरह बताएंगे अगर आप अच्छी तरह से उनको एक्सप्लेन कर सकते हो कि हाँ भी उनकी भी तो गलती अल्लाह ताला ने फिर माफ कर दी ना, ठीक है ना, और उनका जो छोटा सा एक मसला था वो भी हल हो गया, ठीक है, तो फिर ठीक है। लेकिन अदरवाइज खाम खब किसी बंदे को परेशान करने की जरूरत है। दे एक्सेप्टेड देयर मिस्टेक्स। थर्ड वाज हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फोर्थ वन। अच्छा, तो इस तरह से जब ये सारा मामला हुआ तो ये फिर खत्म हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के सबको ठंडा कर दिया। अच्छा, उसके बाद ना आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है वो अपना वाकया मजीद बयान करती हैं कि अब ये वो दिन था ना कि नबी अलैहिस्सलाम ने मिंबर पे खड़े होकर के इस तरह से बात करी थी, फिर सहाबा तो सारे के सारे चले गए। फिर आयशा सिद्दीक अल्लाह तआला जो है ना फरमाती हैं कि मैं सारा दिन रोती रही, मेरे आंसू रुकते ही नहीं थे, इतने आंसू गिर रहे हैं, इतने आंसू गिर रहे हैं, दिन भी रोती रही रात भी रोती रही। ठीक है ना, कितना सिवियर ये मसला था, कितनी बड़ी ये बात थी कि आयशा सिद्दीका तआला जो है ना वो इतनी ज्यादा रो रही थी। अच्छा, फिर फरमाती है कि मैं रो रही थी कि मेरे माँ बाप यानी अबू बकर सिद्दीक रतान और उनकी वालदा आकर के इनके पास बैठ गई और उनको ऐसा लगने लगा कि जैसे कि ना अब मेरा कलेजा फट जाएगा। ये एक कलेजा फटता नहीं है, दिल पाश पाश होता नहीं है, लेकिन मतलब ये कि ऐसा लगता है कि जैसे बंदा फेंट हो जाएगा या इसके ऊपर जो है ना कोई हार्ट अटैक हो जाएगा उसको, तो इतना ज्यादा मैं रो रही थी। अच्छा, रात भी मैं सारी रोती रही, दिन भी मैं सारी रोती रही थी। फिर जब रात खत्म हुई, सुबह हुई ना, तो एक अंसार की औरत आ गई हमारे घर में, ठीक है, और वो आकर के मेरे पास बैठ गई और वो भी रोना शुरू हो गई। यानी इतना ये सदमे वाली बात थी और दुख वाली और परेशानी वाली बात थी कि एवरी वन वॉज अफेक्टेड, हत्ता कि औरतें आ रही हैं जो दोस्त थी, मुखलिस थी और इस फितने का शिकार नहीं हुई थी, वो भी रो रही हैं आकर के बैठ करके। ठीक है जी, क्या उम्मे रोमान या उम्मे रोमान गालिबन, दो दो बीवियां थी ना, एक तो अस्मा रतान की वालदा थी और एक जो है वो इनकी उम्मे रोमान, इनकी वालदा का नाम मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, किसी को पता हो तो बता दे। अच्छा, तो इस तरह से ना फिर ये अंसार की औरत भी रो रही है कि इतने में नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, घर में आ गए, ठीक है, और सलाम किया और वो आकर के मेरे पास बैठ गए। जब से ये सारा का सारा मसला शुरू हुआ था ना, यानी जब से वापस आए थे सफर से, तो उसके बाद से मैं बीमार पड़ गई थी और आपको बताया था ना कि नबी अलैहिस्सलाम मेरे पास आके बैठे नहीं थे उसके बाद से। आज पहली दफा आपसे सलाम आकर के बैठे और बैठ करके आपसे सलाम ने फिर एक बात करनी शुरू करी। सबसे पहले अल्लाह ताला के हमदो सना करी और फिर आयशा फरमाती है कि मुझसे कहा कि आयशा मुझे तुम्हारे बारे में ना ऐसी ऐसी बात पहुंची है, यानी लोग तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे पता लगा है। अगर तो तुमने कोई गलत काम नहीं किया, ठीक है ना, मतलब इतना ही था कि तुम पीछे रह गई थी और जो है ना वो तुम ऊंट पे बैठ करके वापस आ गई, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना, कोई फ्रेंडशिप वगैरह तुमने कोई नहीं बनाई थी सफान बिन मोतल से, ठीक है ना, जो कि गलत काम है, ठीक है। तो अगर तो तुमने कोई गलत काम नहीं किया ना, तो अल्लाह ताला जो है ना वो तुम्हें बरी कर देंगे, यानी तुम्हें अल्लाह ताला बता देंगे किसी तरीके से मुझे कि तुमने कोई गलत काम नहीं किया। इसको कहते हैं बरी कर देना किसी को, ठीक है ना, जुर्म से बरी, किसी ने किसी के ऊपर इल्जाम लगाया और फिर जो है ना वो बाद में ये प्रूव हो गया कि नहीं, इसने ये काम नहीं किया था, इसको कहते हैं बरी करना। अरबी जुबान के अंदर भी इसका लफ्ज बराअत इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, तो अल्लाह ताला तुम्हें बरी कर देंगे। और अगर तुमने कोई गलत काम किया है, कोई गुनाह का काम किया है ना, तो तुम अल्लाह ताला से तौबा कर लो, गुनाह के ऊपर इस्तिगफार कर लो। अल्लाह ताला ना जब उसका बंदा गुनाह का इकरार कर लेता है और अल्लाह ताला से फिर रुजू करता है, तौबा करता है, तो अल्लाह ताला भी उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है, ठीक है ना। तो नबी अलैहिस्सलाम को बात पता नहीं थी, आपसे सुनने ने दोनों ऑप्शन आयशा सिद्दीका ताला के सामने रख दिए कि भाई अगर तुमने कुछ नहीं किया तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें बरी कर देंगे, अल्लाह ताला वन वे और दी अदर बरी कर देते हैं, ठीक है ना, बिना, और अगर तुमने किया तो भाई तौबा कर लो, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, ठीक है ना। तौबा का दरवाजा तो सिर्फ उस वक्त बंद होता है जब इंसान मलिकुल मौत को देख लेता है, उसके बाद तौबा नहीं कर सकता, ठीक है ना, उससे पहले पहले हर इंसान बड़े से बड़े गुनाह से तौबा कर सकता है, तो तुम भी कर लो भाई तौबा, ठीक है। अच्छा, आयशा सिद्दीक रतान फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस बात को खत्म फरमाया ना, तो इसका असर मेरे ऊपर अजीब रिवर्स असर हुआ कि मेरे पहले तो आंसू रुक नहीं रहे थे, हत्ता कि अम्मा अब्बा भी समझ रहे हैं कि मेरा कलेजा फट जाएगा और जो अंसार की औरत भी आई है वो भी मेरे साथ बैठ के रोना शुरू हो गई। नबी अलैहिस्सलाम की इस बात को सुनकर के ना मेरे आंसू बिल्कुल खुश्क हो गए, है ना, और एक आंसू भी जो है ना वो अब आंख के अंदर बाकी नहीं रहा। और मैंने ना अपने वालिद से कहा, अबू बकर सिद्दीक रतान से, कि अब्बू आप मेरी तरफ से जवाब दें नबी अलैहिस्सलाम, ठीक है। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि आयशा मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या जवाब, ठीक है ना, आई डोंट नो व्हाट टू से, ठीक है ना। फिर आयशा सिद्दीकी ने अपनी वालदा से कहा, अम्मी आप मेरी तरफ से जवाब। और उनकी वालदा ने कहा, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या, ठीक है। तो जब दोनों ने इस तरीके से एक्सक्यूज कर लिया तो आयशा सिद्दीकी अनहा जो है ना, उन्होंने कहा कि अल्लाह को खूब मालूम है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं बरी हूं गुनाह से, ठीक है। लेकिन तुम लोग यानी तुम सारे के सारे, ऑल ऑफ यू, ठीक है ना, ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है ना शहर के अंदर, तो इन सारे इस प्रोपेगेंडा की वजह से ना तुम्हारे दिल के अंदर ये बात बस आ गई है कि ये ऐसा है, प्रोपेगेंडा का असर। लेकिन अब आप इमेजिन करें क्या जमाना था, कैसे लोग थे, लेकिन प्रोपेगेंडा का असर लोगों के ऊपर हुआ, ठीक है ना। तो आज तो हमारा कितना बुरा जमाना है, यानी हम लोग कितने ज्यादा बुरे हो चुके हैं, कितना गुनाह और प्रोपेगेंडा जो है वो टेलीविजन और सोशल मीडिया के जरिए से हो रहा है, तो क्या असर होगा इसका लोगों के ऊपर, है ना। तो उन्होंने फरमाया कि तुम लोगों के दिल में ना ये बात इस दर्जा रासिफ हो गई है कि अगर मैं कुछ कहूंगा ना, कहूंगी ना अपने डिफेंस में अपने आप को कि भाई मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया और अल्लाह ताला खूब जानता है कि मैं बरी हूं, लेकिन तुम लोग मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे, आप लोग मेरी बात पे, यानी जाहिर है अदब के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, अम्मी बैठी हुई हैं, अब्बू बैठे हुए हैं, है ना, तो फरमा रही है कि आप लोग मेरी बात पे यकीन ही नहीं करेंगे अगर मैं अपने डिफेंस में कोई बात भी कहूंगी। प्रूफ तो मेरे पास भी कोई नहीं है, जिस तरह उनके पास प्रूफ नहीं है मेरे पास भी कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है ना। और अगर मैं ये कहूं ना कि हाँ मैंने कोई गलत काम किया है, तो आप लोग ना फौरन उस बात पे यकीन कर लेंगे, क्योंकि आपका जहन जो है ना वो स्क्यूड हो चुका है इस तरफ, पायल हो चुका है इस तरफ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक है। तो अल्लाह ताला जानता है कि मैं बरी, ठीक है। यानी इस वक्त आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपना मुआमला बिल्कुल अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया, इसको कहते हैं अल्लाह के हवाले, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया, ठीक है। और फरमाती हैं कि मैंने कहा रो करके, वल्लाही ला अतूबु मिम्मा ज़करू, अल्लाह की कसम जो ये लोग मेरे बारे में जिक्र कर रहे हैं ना, मैं उससे कोई रुजू नहीं करता, यानी मैं आई डोंट वांट टू इवन टॉक अबाउट इट, आई डोंट वांट टू गेट एंगेज विद देम, है ना, आई डोंट इवन वांट टू डिफेंड माय सेल्फ इन फ्रंट ऑफ दीस पीपल, मैं इन लोगों के सामने अपने आप को डिफेंड भी नहीं करना चाहती, मेरा मामला अल्लाह के साथ, ठीक है। और फिर उन्होंने बड़ी मजे की बात कही, उन्होंने कही फिर कहा कि मैं बस वही कहूंगी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के अब्बू ने कहा था, यूसुफ अलैहिस्सलाम के अब्बू ने कहा था फसबरुन जमील, कि बस बहुत खूबसूरत जो सब्र होता है ना, अच्छा वाला सब्र, मैंने अच्छा वाला सब्र ही करना है, फसबरुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफ, और अल्लाह ताला मेरी मदद करने वाला है इन बातों के खिलाफ जो ये लोग मेरे बारे में कर रहे हैं, ठीक है ना। याकूब अलैहिस्सलाम ने यही बात कही थी जब उनके बेटों ने जो है ना उनके साथ आकर के उल्टी सीधी बातें करी थी यूसुफ अलैहिस्सलाम के, ये हो गया लोमड़ी को खा गया और ये वगैरह, सब्रुन जमील, बस मैं एक सब्र करूंगा, अच्छा वाला सब्र, और अल्लाह ताला जो है ना वो मेरी मदद करने वाला, ठीक है। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बाद में फरमाया कि उस वक्त मेरे ऊपर इतनी ज्यादा कैफियत आई हुई थी गम की कि मुझे याकूब अलैहिस्सलाम का नाम ही याद नहीं आ रहा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के अब्बू का नाम क्या था, मैं उनका नाम ही भूल गई, तो इस वजह से मैंने कहा अबा यूसुफ, यूसुफ के अब्बू ने कहा, ठीक है। इतना ज्यादा बेचारी परेशान थी उस वक्त, और ये कह करके ना वो जा करके बिस्तर पे लेट गई, और उनको यकीन था, कहती हैं कि मुझे यकीन था कि अल्लाह ताला जो है ना वो किसी तरीके से मुझे बरी कर देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला को पता है और मैं जो हूँ वो बिल्कुल पाक साफ हूँ, मैंने बिल्कुल कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन फरमाती हैं कि मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि अल्लाह ताला मेरे हक में कुरान मजीद की आयात नाजिल फरमाएंगे, ठीक है। क्या मतलब कि अल्लाह ताला से अच्छा गुमान तो था, अल्लाह ताला से तो बेहतरीन गुमान था कि अल्लाह ताला जो है वो मुझे बरी कर देंगे, लेकिन अपने बारे में गुमान ये नहीं था कि मैं तो इतनी बड़ी हूं कि मेरे बारे में अल्लाह ताला जो है ना वो कुरान की आयात नाजिल फरमाएंगे, वही नाजिल फरमाएंगे। यानी अपने बारे में गुमान कम था, अल्लाह ताला के बारे में गुमान बड़ा था, ठीक है ना। और यही मोमेंट को करना होता है, ये एक्सपेक्टेशंस करना कि नहीं अल्लाह ताला जो है वो मुझे कोई ताज पहनाएंगे, अल्लाह ताला जो है वो बहुत बड़े तरीके से बैंड बाजे के साथ जो है ना वो मुझे बरी करेंगे और लोगों में मेरा शोहरत हो जाएगी, ये हम अपने बारे में बिल्कुल गुमान ना करें। लेकिन अल्लाह के बारे में बदगुमानी नहीं करें कि अल्लाह ताला जो है ना वो हक का साथ नहीं देंगे, अल्लाह ताला जो है वो गुरुओं का साथ दे देंगे, नहीं, बिल्कुल अल्लाह के बारे में नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन्होंने कहा और सोचा और इसके बाद जा करके लेट गई। बस आखिरी बात यहाँ पे कि एक और रिवायत में है कि आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि मुझे बिल्कुल ये गुमान नहीं था कि मेरे बारे में कुरान की आयात नाजिल होंगी जो कि कयामत तक जब तक मुसलमान कुरान पढ़ते रहेंगे तो वो पढ़ते रहेंगे इन आयात को, और मस्जिदों में उनकी तिलावतें भी होती रहेंगी, जब खुतबे दिए जाएंगे तो उनके अंदर भी उन आयात को पढ़ा जाएगा, लोगों को सुनाया जाएगा कि देखो आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा जो है वो कितनी पाक पास थी, कितनी अच्छी थी, ठीक है ना। मुझे इसका बिल्कुल भी गुमान नहीं था। हाँ, मैंने ये सोचा था कि नबी अलैहिस्सलाम को ख्वाब में अल्लाह ताला बता देंगे, कोई और तरीका हो जाएगा जिस तरीके से आप सल्लम को पता चल जाएगा और मैं बरी हो जाऊंगी। ठीक है, क्लास का टाइम भी खत्म हो गया, किसी को अगर कोई सवाल पूछना है तो वो पूछ के फिर हम क्लास सुन करके हम क्लास खत्म करते हैं। जी जी, आप बड़ी देर से आप उठा रहे हजरत सुफान अल्तान की, ये इल्मुल गैब वाले सवाल हमेशा करते हैं। मुझे नहीं पता भाई। लेकिन इस तरह की जो कंडीशन होती है ना, अल्लाह ताला ने औरत की सिफत ऐसी बनाई है कि उसके लिए हया सबसे अहम चीज होती है, उसके लिए उसकी इज्जत जो है ना वो सबसे ज्यादा अहम चीज होती है, ठीक है ना। और उसके अंदर जज्बात जो है वो अल्लाह ताला ने गालिब रखे हैं, जैसे कि हम आपके सामने कई दफा बयान कर चुके हैं कि आपकी अम्मी आपके साथ जो बर्दाश्त करती रहती हैं वो जज्बात ही की वजह से बर्दाश्त करती हैं, वरना एक लगा करके आपको घर से बाहर निकालते हैं जिस तरह की हरकतें करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला ने औरत के साथ बनाया, और आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा जो थी वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट औरतों में से थी, तो इस वजह से उनके ऊपर ये कैफियात थी, मर्दों के ऊपर इस तरह की कैफियात नहीं होती, ठीक है ना, थोड़ा दूसरे लेवल की होती है, वो एक अलग चीज होती है। जी, और किसी ने कुछ ऑनलाइन कोई सवाल? आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में 10 आयात अल्लाह ताला ने सूरह नूर के अंदर नाज़िल फरमाई, ठीक है, जो कि हम इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर उन आयात के बारे में ही पढ़ेंगे। तो अब जो भी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में गंदी बात करता है, उनको बुरा भला कहता है, जैसे कि आज दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में बहुत गंदी गंदी बातें करते हैं, अल्लाह ताला ने उनके दुनिया में आने से पहले ही उनका इंतजाम किया हुआ है, ठीक है, कि कुरान मजीद के अंदर उनके लिए आयात अल्लाह ताला ने रखी हुई हैं जो कि ऐलान कर रही हैं ये झूठे हैं, ये बुरे लोग हैं, ये झूठे लोग हैं जो आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा के ऊपर तोहमत लगाते हैं, आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा को बुरा भला कहते हैं, ठीक है ना। तो कुरान जो है ना वो आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा की गवाही उन लोगों के पैदा होने से भी पहले, उन लोगों का फितना शुरू होने से पहले ही अल्लाह ताला ने आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए इंतजाम किया हुआ है, ठीक है। ये एक बहुत बुनियादी बात है, हम इस बात को याद रखें। हम इसको बहुत सारे लोग जो है ना वो समझते हैं कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, नहीं, आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में बुरी बात करना ये कुरान मजीद का इनकार करना है, क्योंकि कुरान मजीद के अंदर एक्सप्लिसिटली आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में बातें, ठीक है, अच्छी वाली बात, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।